వసుదేవసుతం దేవం తం సజానురమర్దనం వసుదేవసుతం దేవం తం సజానురమర్దనం
జయ రామ
Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Ramai Ram Bhadrai Ram Chandrai Vedhase Raghunathay Nathay Sitay Pataye Namah Atulita Baladhamam Hema Shailabhadeham Danujavana Krishanam Jnaninam Agraganyam Sakalaguna Nidhanam Vanaranamadhisham Raghupati Priya Bhaktam Vatjatam Namami Ram 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 Markandeya ke ashram mein Kaustuki naam ke ek ऋषि गए हुए थे, उनके साथ बड़ी बातचीत हो रही थी। उस प्रसंग में ये पृथ्वी है, ये इसमें कितने विभाग हैं, कितने वर्ष हैं, जम्बू द्वीप आदि में कितने, सबका वर्णन किया। उस वर्णन में ये बात भी आई कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं। वो 14 मनु में सबसे बड़े तो मनुवन स्वयंभू मनु है। स्वयंभू मनु क्या है? जो ब्रह्मा जी से अपने आप पैदा हुए, स्वयंभू ब्रह्मा से पैदा हुए, वो स्वयंभू। और दूसरे नंबर में स्वारोचिष हुए। अब उसके प्रसंग में बात चलती है। क्रोष्टकी पूछता है, हे मार्कंडेय जी, आपने मेरे प्रश्न के अनुसार पृथ्वी समुद्र आदि के विषय में प्रमाण सहित सब बातें कह दी। अब मैं मन्वंतरों, उनके स्वामियों, देवताओं, ऋषियों और मनुपुत्रों के परिचय में कुछ सुनना चाहता हूं। मार्कंडेय जी ने कहा कि हे मुनि, हे मुने, स्वयंभू मन्वंतर की बात तो बता दी, अब स्वारोचिष नामक मन्वंतर की बात सुनो। वरुणा देवी के तट पर अरुणास्पद नामक नगर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वो इतने स्वरूपवान थे मानो अश्विनी कुमारी आ गए। उनका रूप अश्विनी कुमारों से कम नहीं था। वे स्वभाव से बहुत कोमल, सदाचारी और वेद वेदांग के पारगामी थे। अतिथियों के प्रति सदा प्रेम बना रहता था, यहां तक कि कोई रात्रि में भी कोई आ जाता घर पर तो अभ्यागतों को ठहरने के लिए स्थान और रात्रि में भी भोजन आदि की व्यवस्था कर देते थे। उनके मन में एक इच्छा रहती थी कि इस पृथ्वी पर बहुत सुंदर सुंदर बगीचे हैं, जंगल हैं, नाना प्रकार के नगर हैं, बड़ी महिमा सुनता हूं, तो इस पृथ्वी मंडल पर थोड़ा घूमूं मैं और इन सब बगीचों को, जंगल आदि को देखूं। पर बेचारे कुछ कर सकते नहीं थे। कहां लंबी चौड़ी पृथ्वी कैसे घूमे। एक दिन उनके घर पर कोई अतिथि आया, जो नाना प्रकार की औषधियों के प्रभाव को जानने वाले थे, मंत्र विद्या में बड़े निपुण थे, बहुत बातों को जानते थे। उस ब्राह्मण को यह पता नहीं कि इतनी बातें जानते हैं। ब्राह्मण ने तो अपने कर्तव्य के अनुसार उनकी खूब सेवा की, अतिथि सत्कार आदि के बाद परस्पर प्रेम से कई प्रकार की चर्चा चली। उसमें उस अभ्यागत महानुभाव ने ब्राह्मण से अनेक देशों की, रमणीय नगरों की, ऐसे जंगलों की और नदियों की, पहाड़ों की, पुण्य तीर्थों की बातें बताई तो उस ब्राह्मण को बड़ा अचंभा हुआ। इतने देश में आप घूमी आए, आप इतने देशों में घूमे, इतना परिश्रम उठाया, पर न तो आप बूढ़े हुए और न जवानी ने आपका साथ छोड़ा। थोड़े ही समय में आप सारी पृथ्वी को कैसे देख लिए, कैसे भ्रमण कर लिया। आगंतुक वो भी ब्राह्मण थे। उस अतिथि ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण, मंत्र और औषधि के प्रभाव से मेरी गति कहीं भी रुकती नहीं। मैं आधे दिन में 1000 योजन चलता हूं। 1000 योजन का अर्थ है 400 कोस। 400 कोस का, सॉरी, 4000 कोस। 1000 को 4 से गुणा किया, 4000 कोस। 4000 कोस का अर्थ है 12000 किलोमीटर। इतना आधे दिन में चल लेता हूं। आगंतुक ब्राह्मण बड़े विद्वान थे, अतः गृहस्थ ब्राह्मण को उनकी बातों पर बड़ा विश्वास हो गया। उन्होंने बड़ी नम्रता से पूछा, हे भगवान, मुझ पर भी कोई ऐसी कृपा कीजिए। मेरे मन में बहुत वर्षों से इच्छा है, मैं खूब घूमूं, देखूं बाग बगीचों को, जंगलों को, पर्वतों को, पर क्या करूं, मैं लाचार, देख सकता नहीं, जा सकता नहीं। आगंतुक ब्राह्मण ने इस ब्राह्मण की प्रेम भरी बात सुनी तो उन्होंने उसके पैर में लगाने के लिए एक लेप दे दिया। कहा कि जाओ, जिस दिशा में जाना चाहते हो उसकी तरह मुंह कर लेना और फिर उस दिशा के मंत्र बोलना, उस दिशा के मंत्रों से उस दिशा को मंत्रित कर देना। इधर जाना है तो इधर उत्तर का मंत्र बोल दो, इधर पूर्व में जाना है तो इधर का बोल दो, दक्षिण में जाना है इधर का बोल दो, पश्चिम में जाना उधर का बोल दो। वह लेप अपने पैरों में लगाकर वो चले गए। वह लेप अपने पैरों में लगाकर ब्राह्मण देवता अनेकों झरनों से सुशोभित हिमालय पर्वत को देखने की इच्छा किए, और लेप तो लगा हुआ ही था, और उन्होंने सोचा कि चलो आधे दिन में जाकर के 1000 योजन जाऊंगा और शेष जो आधा दिन बचेगा तो शाम को मैं वापिस घर पर आ जाऊंगा। तो वो चले तो वो सर सर ऐसे चलने लगे जैसे उनके पैर अपने आप ही हवा में उड़ रहे हों, कोई थकावट नहीं, कोई घबराहट नहीं, और हिमालय पर पहुंच गए। हिमालय की पर्वतीय भूमि पर पैदल चलना फिर आरंभ किया तो बर्फ के कारण से उनके पैर में लगा हुआ जो दिव्य औषधियों का लेप था वो धुल गया। इससे उनका जाना आना सब कुंठित हो गया। अब वे इधर उधर हिमालय के मनोहर शिखरों का अवलोकन करने लगे। वहां सिद्ध गंधर्व वगैरह खूब रहते थे, किन्नरगण भी विहार करते थे, इधर उधर देवता आदि के क्रीड़ा विहार से वहां की रमणीयता बहुत बढ़ गई थी। सैकड़ों दिव्य अप्सराओं से भरे हुए वहां के मनोहर शिखरों का दर्शन करने से ब्राह्मण को तृप्ति नहीं हुई और उनको बड़ा रोमांच हुआ। अब दूसरे दिन उन्होंने विचार किया अब घर की तरफ चलना चाहिए, पर अब वो चले कैसे, उनके पैरों की गति तो कुंठित हो गई। वे सोचने लगे कि भाई मेरे बर्फ के पानी से मेरा पैर का लेप धुल गया, ये पर्वत बड़ा दुर्गम, मैं अपने घर से बहुत दूर चला तो आया पर अब घर पर पहुंचूंगा कैसे, नहीं पहुंचूंगा तो मेरी अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म की हानि हो जाएगी, मैं यहां रह करके कैसे करूंगा, क्योंकि मेरी अखंड अग्नि मेरे घर पर जल रही है, उसी से ही मुझे अग्नि का पूजन करना है, क्या करूं। ऐसे समय में मुझे कोई तपस्वी महात्मा का दर्शन हो जावे तो मैं घर पहुंचने के लिए कोई उपाय सोचूं, वे मुझे उपाय बतला देवे, मैं घर पहुंच जाऊं। कहां मैं ब्राह्मण होकर इधर घूमू उधर घूमू, क्यों मैंने इच्छा की, मैं तो इस इच्छा के कारण से फंस गया। मन में विचार आया कि इस हिमालय पर तो कोई ब्राह्मणों की श्रेष्ठ पुरुषों की महात्माओं की कमी तो नहीं है, पर मिले तब ना, चरणों की औषधि जनित शक्ति तो नष्ट हो गई, क्या करूं। ऐसे वो बेचारे बड़े दुखी हुए हुए घूम रहे थे, अकस्मात एक अप्सरा की दृष्टि उन पर पड़ी। वो अप्सरा प्राय अपने रूप के कारण से सबको लुब्ध करती थी, रूप भी बड़ा अप्सरा थी, बड़ा सुंदर था। उस अप्सरा का नाम था बरूथिनी। अब उसके मन में आया ये हमारे देवताओं का स्थान है, किन्नरों का स्थान है, गंधर्वों का स्थान है, सिद्धों का स्थान है, यहां ये ब्राह्मण कैसे आया, मनुष्य कैसे आया, और मनुष्य यदि यहां आया है तो मैं इसको अपने चंगुल में फंसा लूंगी, इसके साथ प्रेम करूंगी, क्योंकि ऐसे रूप को देख करके जरूर ये मुझ में आकृष्ट हो जाएगा और मैं इसको अपने ब्राह्मण धर्म से डिगा दूंगी। ये जिस शक्ति से यहां आया है वो शक्ति इसकी नष्ट कर दूंगी। वो ये भी सोचती है तो ये अश्विनी कुमारों के समान। खैर मेरे को तो फंसाना आता है, कैसे न कैसी फंसाई लूंगी। ऐसा विचार करके वो आगे बढ़ी। वो मन में सोचती है कि देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व नाग सबको देखा है, पर इस ब्राह्मण का जो ब्राह्मण तेज है, तपस्या का तेज है, जो इसमें एक अलौकिक आभा है, ऐसा और किसी में नहीं देखा। मैं भी अपना सौभाग्य मानती हूं ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण पर मैं अनुरक्त हो गई। यदि ये भी मुझे स्वीकार कर ले तो फिर बड़े पुण्य की बात हो जाएगी। इस प्रकार चिंता करती हुई दिव्य लोक की वो परम सुंदरी अप्सरा और भी सुंदर रूप धारण करके अकस्मात उनके सामने उपस्थित हो गई। उस बरूथनी अप्सरा को देखकर ब्राह्मण कुमार स्वागत पूर्वक उसके पास आए और उससे बोले, हे दिव्य कांति वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम कहां रहती हो और यहां क्या करती हो? यहां क्यों आई हो? मेरे यदि किसी काम में सहायता कर सको तो मैं आपकी सहायता लेना चाहता हूं। मैं पृथ्वीलोक पर अरुणास्पद नगर से यहां आया हूं। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पैरों में एक दिव्य लेप लगा हुआ था, घूमने की इच्छा से आया और बर्फ के जल से वो डूब गया। अब मेरे में दूर जाने की शक्ति नहीं रही, क्या आप मेरी सहायता कर सकती हो? तो मैं अभी अपने घर चला जाऊं। बड़ी सरलता के साथ उन ब्राह्मण ने ये बात कही। बरूथनी मुस्कुराती हुई और टेढ़ी नजरों से देखती हुई ऐसा देखने लगी जैसे वो उससे अपार स्नेह करती हो। वो बोली, हे ब्राह्मण, कैसा सुंदर पर्वत स्थान है, आज आपके मुझे बड़े भाग्य से दर्शन हो गए। मैं आपके अधीन हूं, बताओ आपकी क्या आज्ञा का पालन करूं? ब्राह्मण ने बड़ी सरलता से कहा, हे कल्याणी, मैं बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ हूं, जिस उपाय से मैं अपने घर जा सकूं और मेरा नित्य कर्म का जो अनुष्ठान है, अग्निहोत्र आदि का कार्य है, वो कर सकूं, आप वही उपाय करो। हे बद्रे, ब्राह्मण के लिए नित्य कर्म छूटना ये बहुत बड़ी क्षति होती है। ब्राह्मण नित्य कर्म करता हुआ कई प्रकार के पापों से बचता है, अतः उससे बचने के लिए तुम जल्दी से जल्दी मुझे हिमालय से बाहर ले जाओ, मेरा उद्धार करो। और शास्त्रों का एक कायदा भी है, विशेष करके श्रेष्ठ पुरुषों के लिए परदेश में रहना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है, हर किसी स्त्री से बात करना अच्छा नहीं है, हर किसी पुरुष की ओर तुम्हें भी इस प्रकार देखना अच्छा नहीं है। ये सब बातें ध्यान में रखो, मेरी सहायता करो। मेरे जाने क्या हो गया? ब्राह्मण को कोई इच्छा रखनी नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे जंगल वन देखने की इच्छा हो गई। ये मेरा बड़ा भारी अपराध हुआ, ये आज समझ में आया। श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर में ही मौजूद रहे तभी उसके सब अनुष्ठानों की सिद्धि होती है, और इसी प्रकार प्रवास करें कि उसके नित्य कर्म में कोई हानि न आए। हे यशस्विनी, अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम कोई ऐसी कृपा करो जिससे मैं सूर्यास्त के पहले अपने घर पर पहुंच जाऊं। इधर बरूथनी को तो उस ब्राह्मण को अपने धर्म से डिगाना था। वो बोली, हे महाभाग, ऐसा मत कहो, कभी ऐसा दिन न आए आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, इससे अच्छा और क्या स्वर्ग भी हो सकता है? नहीं हो सकता। आपके घर में रखा क्या है? टूटी फूटी झोंपड़ी होगी। यहां देखो कितना सुरम्य स्थल है। आपने तो मेरे मन को हर लिया है। मैं आपको सुंदर हार, वस्त्र, आभूषण, तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ और ऐसा अंगराग आदि सामग्री दूंगी जो आपने अपने जीवन में कभी देखा नहीं, अनुमान भी नहीं लगाया है। इसलिए क्यों आप घर में जाने की सोचते हो? यहीं पर बैठे रहो। यहां रहने से आपके कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहां कितने देवता घूमते हैं। इन देवताओं के समान तुम्हारा भी यौवन यहां बना रहेगा। इसलिए आप मुझ पर कृपा करो और आप यहीं रहो। ब्राह्मण ने कहा, अरे दुष्टे, दूर रहो, तुम्हारे जैसे स्त्रियों की दृष्टि से मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट होता है, दूर रहो। जो तेरे जैसा नीच पुरुष होगा वही तेरे साथ प्रेम करेगा, चली जाए यहां से। मैं तो किस भाव से तुझसे प्रार्थना करता हूं और तू मेरी बात की तरफ ध्यान ही नहीं देती। जानती है कि नहीं, मैं गार्हपत्य इत्यादि तीन अग्नियों को रोज पूजता हूं, वे मेरे आराध्य देव हैं और वे अग्नियां मेरा तेज है, वो मेरी रक्षा करने वाले हैं। अग्निशाला में मेरे लिए रमणीय स्थान है, वहां पर कुशासन से सुशोभित वो स्थान बहुत सुशोभित होता है और उस स्थान पर सुशोभित वेदी है, चौकी, वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। उस चौकी पर जाकर अग्नि में आहुति दूं, अग्नि की उपासना करूं, मेरा प्रेम उसी जगह से है। हे अप्सरे, यदि ब्राह्मण भोग के लिए आगे बढ़ जाए या उसके मन में भोग की चेष्टा हो जाए तो वह अपने जीवन में किए हुए सारे सत्कर्मों से नष्ट हो जाता है और उसको इस लोक में और परलोक में महान कष्ट उठाना पड़ता है। चली जाओ यहां से। वरूथनी बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपकी क्या रक्षा कर सकती हूं? आप मुझे स्वीकार करोगे तभी मैं आपकी सेवा के लिए आगे आ पाऊंगी। ये मैं अप्सरा हूं, आप मुझे और स्त्रियों के समान मत समझो। हम लोगों के लिए यहां कोई नियम धियम नहीं होता है। हम किन्हीं भी देवताओं के पास जाती आती रहती है। हमारा स्थान कुछ और ही है। यदि आप मेरी प्रार्थना ठुकरा दोगे तो आपको बड़ा भयंकर पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे बरूथिनी, मैंने बचपन से अपने गुरुजनों से ये उपदेश लिया है कि पराई स्त्री की अभिलाषा कभी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं तुझे किसी प्रकार से नहीं चाह सकता, भले ही तू कितना ही बिलख, चाहे तू सूख करके दुबली हो जा, मर जा, अग्नि में चली जा, कहीं चली जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। उसी समय मार्कंडेय जी कहते हैं, उसी समय उस ब्राह्मण ने पवित्र जल का आचमन किया और गार्हपत्य अग्नि को प्रणाम करके अपने मन से कहा, हे अग्निदेव, आप सब कर्मों की सिद्धि के कारण है, आपसे ही आह्वनी और दाक्षिणाग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, ये अग्नियों का नाम लेने वाला था मैं, आप इसे आह्वनी और दाक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि, इन दोनों का प्रादुर्भाव हुआ है, आपको तृप्त करने से देवता वृष्टि करते हैं और अन्न आदि की वृद्धि आपके द्वारा होती है, अन्न से संपूर्ण प्राणियों का निर्वाह होता है, इस प्रकार आपसे जगत की रक्षा होती है, ये सत्य की ये बात यदि अत्यंत सत्य है तो हे अग्नि, इस सत्य के प्रभाव से मैं सूर्यास्त होने के पहले अपने घर पहुंच जाऊं, यदि कभी ठीक समय पर मैंने वैदिक कर्मों का परित्याग नहीं किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से मैं आज ही घर पहुंचकर सूर्य के डूबने से पहले सूर्य को देख लूं, यदि कभी मेरे मन में पराए धन की तथा पराए स्त्री की अभिलाषा हुई हो तो नहीं, थोड़ा छूट गया, यदि कभी मेरे मन में पराए धन की तथा पराए स्त्री की अभिलाषा न हुई हो तो आप मेरा ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, मैं बहुत संकट में पड़ा हुआ हूं। उस ब्राह्मण के द्वारा ऐसा कहने पर उसके शरीर में एक गार्हपत्य अग्नि ने प्रवेश किया और फिर उससे अग्नि की ज्वालाएं प्रकट हुई और उन अग्नि ज्वालाओं के बीच में अग्निदेव सूर्य उस प्रदेश को खूब अच्छा प्रकाशित करने लगे। उधर इन तेजस्वी ब्राह्मण को इस प्रकार देख करके देवांगना का अनुराग और भी बढ़ गया, परंतु अग्निदेव के प्रवेश करने पर वे ब्राह्मण कुमार जैसे आए थे उसी प्रकार तुरंत वहां से चल दिए और एक क्षण में घर पहुंचकर उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से सब कर्मों का अनुष्ठान पूरा कर लिया, बच गए। उनके चले जाने के बाद उस सर्वांग सुंदरी अप्सरा ने लंबी लंबी सांस लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत किए। वो बार बार यही सोचती थी, मैं ब्राह्मण को डिगा नहीं सकी, धिक्कार है मेरे रूप यौवन को, उस ब्राह्मण को डिगा देती तो उस ब्राह्मण का जो ब्रह्म तेज है वो ब्रह्म तेज मुझे परास्त नहीं कर सकता। परंतु वो ब्राह्मण बहुत तेजस्वी है, वो अपने रूप को धिक्कारने लगी। उस समय उसका मन अपमानित होने से सूख सा गया और उसको वहां उस जंगल में कहीं सुख नहीं दिखा। एक तरफ तो ये बात हुई। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टकी, कली नाम का एक गंधर्व था जो पहले से ही इस अप्सरा में आसक्त हो रहा था, किंतु उस अप्सरा ने उसको फटकार दिया। उस दिन बरूथनी को उस ब्राह्मण के प्रति हाव भाव कटाक्ष करते देखा तो वो छिप करके सब बातें समझ गया। वह मन में सोचने लगा, आज बरूथनी इस प्रकार बेचैन हुई हुई क्यों दिखती है, इसका म्लान मुख हो रहा है, तो सब बात समझ करके अपने समाधि के प्रभाव से विचार किया, अब समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। यह बरूथनी जिस ब्राह्मण को चाहती है उसी का रूप यदि मैं बना लूं तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगी और ये मेरे साथ रहने लगेगी। ऐसा निश्चय करके गंधर्व ने अपने प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया और जहां बरूथनी बैठी थी उसके आसपास अनजाना सा होकर विचरण करने लगा। उसको देखकर वो सुंदरी नित सुंदरी बड़ी प्रसन्नता से आह्लादित होकर देखने लगी, उसके नेत्र खिल गए। पास आकर बोली, हे ब्राह्मण प्रसन्न हो जाइए, आप कैसे मेरा त्याग कर दिए, आपके त्याग कर देने पर मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो फिर आपको ही पाप लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण किसी को मरते हुए देख नहीं सकता है, या कोई ब्राह्मण के सामने मरता है तो वो उसकी रक्षा करता है, और फिर आपका ये सारा धर्म कर्म नष्ट हो जाएगा। यदि आपने मुझे अपना लिया तो मेरी रक्षा से होने वाला आपको धर्म खूब ज्यादा मिल जाएगा। अब वो बनावटी ब्राह्मण कली, जिसका नाम कली था गंधर्व, वो बोला, क्या करूं सुंदरी, एक ओर तो मेरी धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है और दूसरी ओर तुम प्राण देने की बात कहती हो, मैं तो बड़ा संकट में फंस गया। अच्छा, इस समय मैं तुमसे जैसा कहूं वैसा करने के लिए तुम तैयार हो जाओ तो फिर मैं तुमको अपने पास रख सकता हूं, नहीं तो नहीं। मरुत्री ने कहा, कहिए, आप जैसा मुझे आदेश देंगे हे ब्राह्मण मैं वैसा करूंगी। इस समय मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हूं। वो कली बोला, कली ने कहा कि तुम हमारे साथ रह सकती हो, परंतु तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखना, आंखों को बंद रखना। आंखों को बंद रखना, मैं देखा अपना घड़ी है, बंद आंखों से मुझे देखना, मेरे साथ भी रहो तो बंद आंखें रखना। मरुथिनी ने कहा, ठीक है, जैसे आप कहेंगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तदनंतर वह कली नाम का गंधर्व मरुथिनी के साथ पुष्पित जंगलों में घूमने लगा, कई जगह गया, वहां मुझसे यही बोलता, देखो कितना सुंदर स्थान है, कैसे सुंदर सरोवर है, कैसे रमणीय कंदराएं हैं, अब वो तो आंख खोल के देख नहीं सकती थी, और फिर वह आंख बंद किए कि ब्राह्मण के तेजस्वी स्वरूप का चिंतन करती थी। तत्पश्चात समय के अनुसार ब्राह्मण का ध्यान करते करते उस अप्सरा के गर्भ रह गया। बरूथनी को गर्भिणी जानकर ब्राह्मण रूपधारी गंधर्व ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि देखो अब मैं यहां से जाना चाहता हूं, और ऐसा कहकर वो चला गया। गर्भ की अवधि पूर्ण होने पर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वो मानो सूर्य अपनी किरणों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा हो, वही बालक आगे चलकर स्वारोचिस मनु कहलाने लगा। रोचिस माने किरणें, सूर्य की किरणें। वे महान सौभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और सद्गुणों के साथ साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं के अनुसार शुक्ल पक्ष में दिनों दिन बढ़ता रहता है। महाभाग स्वारोचिस ने क्रमशः वेद, धनुर्वेद, अन्यान्य विद्याओं को ग्रहण किया। धीरे धीरे उसकी तरुण अवस्था आ गई। एक दिन वह मंदराचल पर्वत पर विचरण कर रहा था, इतने में उसकी दृष्टि सुंदर कन्या पर पड़ी। जो कन्या पहले से ही बड़ी भयभीत थी, कन्या ने उसे देखा और घबरा कर कहा कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उसके नेत्र भय से कांप रहे थे। स्वारोचिस ने कहा, क्या बात है, क्यों डरती हूं, क्या कारण है? विरोचित वाणी में उसके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने लंबी सांस लेते हुए सुनाया, हे वीरवर, मैं इंदी वराक्ष नामक विद्याधर की पुत्री हूं। मेरा नाम मनोरमा है। मरुधन्वा की पुत्री मेरी माता है। मंदार विद्याधर की कन्या विभावरी मेरी एक सखी है, और पार मुनि की पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी है। एक दिन मैं उन दोनों सखियों के साथ कैलाश पर्वत के तट पर गई थी। वहां मुझे एक मुनि दिखाई दिए जिनका शरीर तपस्या के कारण अत्यंत दुबला हो रहा था। भूख के कारण से उनका कंठ एकदम सूख गया था। शरीर में कोई कांति नहीं थी। आंखों की पुतलियां बहुत भीतर धसी हुई थी। मैं तो जो है बालक होने के कारण उनकी हंसी करने लग गई, उनका उपहास किया। देखो ऐसा भी कोई शरीर होता है जिसके आंख का पता नहीं, जिसके गर्दन का पता नहीं, कैसा दुबला पतला। ऋषि कुपित हो गए। उन्होंने कहा, ए नीच दुष्ट तपस्विनी, तूने मेरी हंसी उड़ाई, जाओ शीघ्र ही एक राक्षस तुम पर आक्रमण करेगा। इस प्रकार शाप देने पर मेरी सखियों ने उस मुनि को बहुत फटकारा और कहा, तुम ब्राह्मण हो, धिक्कार है, बच्चों की थोड़ी सी गलती तुम क्षमा नहीं कर सकते, तुम्हारी सारी तपस्या व्यर्थ है, क्यों तुम भूख से इतने व्यर्थ में ही पीड़ित हुए, क्या तुमने तपस्या करके प्राप्त कर लिया? तुम जब अपने क्रोध को नहीं जीत सकते, अपने मान अपमान को नहीं जीत सकते, तुमने काहे की तपस्या की? तुम तो क्रोध के अधीन हो, क्रोध को पाला है, तपस्या को नहीं पाला है। ब्राह्मण याद रखो, सामान्य पुरुष भी क्षमाशील होता है। तुम तो ब्राह्मण हो, अपना स्वभाव नहीं बदले, क्षमाशील होता है ब्राह्मण। क्रोध को काबू में रखना असली तपस्या है। क्या किया तुमने? उन सखियों की बात सुनकर के उन अमित तेजस्वी साधु ने उन दोनों को भी शाप दे दिया। अच्छा, तुम आज हमको हमारा ब्राह्मण धर्म बताने आई हो? जाओ, तुम लोगों को अपने शरीर के सौंदर्य का घमंड है तो तुम्हारे सब अंग में कोट हो जाएगी और तेरी जो सखी है उसके क्षय रोग हो जाएगा, टीबी की बीमारी। जाओ यहां से। मुनि की बात सच्ची हो गई। एक के उसी समय टीबी की बीमारी, इसको क्षय बोलते हैं, और दूसरे सखी को तत्काल ऐसे कोड हो गया। और इधर वो एक राक्षस मेरी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। ये देखो उसके गर्जना की आवाज सुनो, क्या उसको उस भयंकर आवाज आपको सुनाई नहीं देती? आज तीसरा दिन है किंतु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का रहस्य जानती हूं और वह सब आपको दे देती हूं, आप इस राक्षस से मेरी रक्षा करो। पिनाकधारी भगवान रुद्र ने पहले यह रहस्य स्वयंभू मनु को दिया था, मनु ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने मेरे नाना को दिया, और नाना ने दहेज के रूप में मेरे पिता को दिया, और मैंने बाल्यावस्था से अपने पिता से ये शिक्षा पाई है। ये संपूर्ण अस्त्रों का हृदय जो समस्त शत्रुओं का संहार करने वाला है, आप इसे शीघ्र ही ग्रहण करें और ब्राह्मण के शाप से प्रेरित होकर आए हुए इस दुरात्मा राक्षस को मार डाले। मार्कंडेय जी कहते हैं कि स्वारोचिस के बहुत अच्छा ऐसा कहकर मनोरमा की प्रार्थना स्वीकार की। फिर मनोरमा ने आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार विधि के सहित संपूर्ण अस्त्रों का हृदय उनको दे दिया। इसी बीच वो भयानक आकार वाला राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुआ पहुंचा। आते वो मनोरमा की ओर दौड़ा, पकड़ने लगा। वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ, करुणामयी वाणी में विलाप करने लगी। तब स्वारुचिस को बड़ा क्रोध आया और भयंकर प्रचंड अस्त्र हाथ में ले उसे धनुष पर चढ़ाकर एकटक नेत्रों से राक्षस की ओर देखा। यह देख वह निशाचर भय से व्याकुल हो गया और मनोरमा को छोड़कर बड़े विनीत भाव से बोला, हे वीर, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, इस अस्त्र को शांत करो, मेरी बात सुनो। आज आपने परम बुद्धिमान ब्रह्म मित्र के दिए हुए अत्यंत भयंकर शाप से मेरा उद्धार कर दिया। हे महाभाग, आपसे बढ़कर मेरा दूसरा कोई उपकारी नहीं। स्वारुचि इसको बड़ा अचंभा हुआ, अरे एक क्षण में, अभी तो मैंने बाण लगाया ही नहीं, शस्त्र का तेरे स्पर्श किया ही नहीं, तो ऐसी बात बोलता है, कहीं तेरे बात के में, तेरे बात के अंदर कोई किसी प्रकार का कपट तो नहीं है? पूछा, बताओ महात्मा ब्रह्म मित्र मुनि ने तुम्हें किस कारण से और क्या शाप दिया था? राक्षस बोला, ब्रह्म मित्र मुनि आठों अंगों से युक्त आयुर्वेद के ज्ञाता है। उन्होंने अथर्ववेद के 13वें अधिकार तक का ज्ञान प्राप्त किया। मैं इस मनोरमा का पिता और खड्गधारी विद्याधर राज नलनाभ का पुत्र इंदिवराक्ष हूं। पूर्व काल में एक दिन मैंने ब्रह्म मित्र मुनि के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान मुझे संपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान कीजिए। अनेकों बार विनीत भाव से प्रार्थना करने पर भी जब उन्होंने मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी, तब मैंने दूसरे उपाय का सहारा लिया। जिस समय में वे दूसरे विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ाते थे, उस समय में मैं अदृश्य रहकर वो विद्या सीखता था। जब शिक्षा पूरी हो गई तब मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं बार बार हंसने लगा। हंसने की आवाज सुनकर मुनि मुझे पहचान गए और क्रोध से गर्दन हिलाते हुए कठोर वचनों में बोले, अरे खोटी बुद्धि वाले विद्याधर, तूने राक्षस के भांति अदृश्य होकर मुझसे विद्या का अपहरण किया है और मेरी अवहेलना करके मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए जाओ मेरे साप से तू राक्षस हो जाओ। उनके यूं कहने पर मैंने प्रणाम आदि के द्वारा उनको प्रसन्न किया। ऋषि कोमल हृदय वाले तो होते ही है। उन्होंने कहा कि विद्याधर, जो मैंने कह दी वो होगी तो जरूर, टाल तो कोई सकता नहीं, किंतु तुम राक्षस होकर भी अपने वापिस स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। निशाचरावस्था में स्मरण शक्ति के नष्ट होने पर क्रोध के वशीभूत हो तुम अपनी ही संतान को खा लेने की इच्छा करोगे, उस समय प्रचंड अस्त्र के तेज से संतप्त होने पर तुम्हें फिर से ये चेत हो जाएगा और पूर्ववत अपने शरीर को धारण करके गंधर्व लोक में निवास करोगे। ये मुझे वरदान भी दे दिया। हे महाभाग, आप कौन है मैं नहीं जानता, परंतु आपको मैं इतना बता देना चाहता हूं कि मैं वही हूं। आपने महान भयदाई राक्षस देह से मेरा उद्धार किया है, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं अपनी पुत्री मनोरमा को आपकी सेवा में दे रहा हूं, आप इसे विधिवत पत्नी रूप से ग्रहण करें। हे महामते, ब्रह्म मित्र मुनि से संपूर्ण अष्टांग आयुर्वेद का जो मैंने अध्ययन किया है वो सब आपको देता हूं और आप स्वीकार कीजिए। यूं कहकर के विद्याधर ने अपने पूर्व स्वरूप को धारण किया, वही दिव्य अस्त्र, दिव्य माला, दिव्य आभूषण, वैसी बड़ी निराली शोभा। फिर उसने स्वरोचिस को आयुर्वेद विद्या प्रदान की और उनकी सेवा में अग्नि, उस सेवा में अपनी अग्नि जैसी कांतिमती कन्या को सौंप दिया। तदनंतर स्वरोचिस ने पिता के द्वारा दी हुई मनोरमा के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके बाद इंदिवराक्ष पुत्री को सांत्वना दे दिव्य गति से अपने लोक में चला गया, वही गंधर्व। फिर स्वरोचिस अपनी सुंदरी पत्नी के साथ उस उद्यान में गया जहां उसकी दोनों सखियां मुनि के शाप के कारण से रोग से व्याकुल थी। अब उसको आयुर्वेद का ज्ञान तो हो ही चुका था, अतः रोग नाशक औषधियों से और उन रसों के प्रयोग से एक को कोढ़ से मुक्त कर दिया और एक को क्षय रोग से मुक्त कर दिया। व्याधि से छुटकारा पाने पर वे दोनों सुंदर कन्याएं अपने शरीर की दिव्य कांति से हिमालय पर्वत के उस रम्य प्रदेश को प्रकाशित करने लगे। इस प्रकार रोग मुक्त हुई कन्याओं में से एक ने स्वरुचि से प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु मेरी बात सुनो, मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूं, मेरा नाम विभावरी है। हे उपकारी पुरुष, मैं अब आपकी हो चुकी हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। मैं आपको एक ऐसी विद्या दूंगी जिससे आप जीवों की वाणी को पहचान लोगे कि जीव क्या बोलना चाहता है, क्योंकि पशु पक्षियों की वाणी स्पष्ट नहीं होती है, उसको आपको समझाने की विद्या बता दूंगी, आप मुझे स्वीकार करो। धर्मज्ञ स्वरुचिष ने एवं अस्तु कहकर उसे स्वीकार किया। दूसरी कन्या बोली, हे आर्य, देखो ये आर्य आर्य पुत्र ये जो बार बार आते हैं शास्त्रों में, मतलब श्रेष्ठ पुरुष होता है उसको आर्य बोलते हैं। हे आर्य, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान महर्षि पार मेरे पिता है, ब्रह्मर्षि पार मेरे पिता है। कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया। एक बार पुंजिका स्थला नामक अप्सरा से उनका संपर्क हुआ, उससे मेरा जन्म हुआ। मेरी माता इस निर्जन वन में मुझे धरती पर सुलाकर अकेली छोड़कर चली गई। फिर एक महात्मा गंधर्व ने मुझे ले लिया और स्नेह पूर्वक मेरा पालन किया। एक बार देव शत्रु अली ने मेरे पालक पिता से मुझे मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उस राक्षस ने, देवताओं के शत्रु तो राक्षस है, तब उस राक्षस ने सोए हुए मेरे पिता को मार डाला। इस दुर्घटना से मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं आत्महत्या करने को तैयार हो गई। उसी समय भगवान शंकर की अर्धांगिनी सत्यवादिनी सती देवी ने मुझे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, ए सुंदरी, क्या करती हो, आत्महत्या? नहीं नहीं, आत्महत्या किसी प्रकार मत करो। आत्महत्या क्यों करती हो? थोड़े से कष्ट के लिए आत्महत्या करके अपराधिनी मत बनो। मैं तुम्हें वरदान देती हूं, एक स्वरोचिष नाम का पुरुष होगा जो तेरा पति होगा, और उसका जो पुत्र होगा वो आगे जाकर श्रेष्ठ मनु होगा। सब प्रकार की निधियां आदर पूर्वक तेरी आज्ञा का पालन करेंगी, तुझे इच्छा अनुसार धन देंगी। हे वत्से, जिस विद्या के प्रभाव से तुझे ये निधियां प्राप्त होंगी उसे तू मुझसे ग्रहण कर ले। मैं तुझे वो मंत्र बताता हूं कि जिससे तुम्हें महानिधियां प्राप्त होंगी। ये पद्मिनी नाम की विद्या है, पर याद रखो, आत्महत्या, कल क्या होने वाला है, कल कितना सुखद दिन आने वाला है, इसका ज्ञान उस वक्त नहीं करते। आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्या पता कब किसका दिन का जो भाग्य सौभाग्य में बदल जाए। संसार में सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, हिम्मत रखो, साहस करो और पद्मिनी नाम की हमारी विद्या को स्वीकार करो। सती ने मुझसे ऐसा कहा, मुझे आत्महत्या के पाप से रोका। तो क्या आप स्वरुचिष हैं? अब मैं आपने प्राणदाता को ये विद्या और अपने आप को आपको सौंपती हूं, आप मुझे स्वीकार करें। कलावती की प्रार्थना सुनकर स्वरुचिष ने एवं अस्तु कह दिया। विभावरी और कलावती की स्नेहपूर्ण दृष्टि से विवाह का अनुमोदन पाकर दोनों को स्वीकार किया। फिर अपने तीनों पत्नियों के साथ में वे वनों में, झरनों में, बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर विहार करते थे। स्वरोचिष ने 600 वर्षों तक उनके साथ विहार किया। वे धर्म का विरोध नहीं करते थे, धर्म की क्रियाओं का खूब अनुष्ठान करते थे। तदनंतर स्वरोचिष के विजय, मेरुनंद और महाबली प्रभाव, महाबली प्रभाव माने विजय, मेरुनंद और प्रभाव, ये तीन पुत्र पैदा हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा ने विजय को जन्म दिया, विभावरी ने मेरुनंद को जन्म दिया और कलावती ने प्रभाव को जन्म दिया। संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली ये पद्मिनी नाम की विद्या थी, जिसके प्रभाव से स्वरोचिष ने अपने तीनों पुत्रों के लिए तीन नगर बना दिए। पूर्व दिशा में कामरूप नामक पर्वत पर विजय नाम का नगर बनाया और उसे अपने पुत्र विजय के अधिकार में दे दिया। उत्तर दिशा में मेरुनंद के लिए नंदवती नाम की पुरी बनाई। इसकी चार दीवारी बहुत ऊंची थी। कलावती के पुत्र प्रभाव के लिए दक्षिण देश में ताल नाम का नगर बसाया। इस प्रकार तीनों नगरों में तीनों पुत्रों को बांट दिया और वह अपने इच्छानुसार विचरण करने लगा। एक दिन वे कहीं घूम रहे थे, उस समय उनको बहुत दूर पर एक सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा। इतने में ही एक हिरणी उनके पास आकर बोली, हे वीरवर, आप कृपा करके मुझ पर ही बाण मारिए, इस सुअर को क्यों मारते हो? सुअर को मारने से क्या लाभ? मुझको मार गिराई, आपका चलाया हुआ बाण मुझे समस्त दुखों से मुक्त कर देगा। स्वरोचिष ने कहा कि हिरणी, तेरे शरीर में तो कोई रोग नहीं है, फिर क्या कारण है कि तू अपने प्राणों को त्यागना चाहती है? हिरणी बोली, जिस पुरुष में मेरा चित्त लगा हुआ था उसका मन दूसरी स्त्री में आ सकता है, अतः उसके बिना मेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसी दशा में बाणों के चूट सहने के सिवा मेरे लिए दूसरी कौन सी दवा है? स्वरोचिष ने कहा, भीरु, ऐसा कौन सा पुरुष है जो तुझे नहीं चाहता, अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है जिसे तू पाने के कारण अपने प्राण त्यागने को तैयार होगी, जिसको न पाने के कारण प्राण त्यागने को तैयार होगी? मृगी बोली, आपका कल्याण हो, मैं आपको ही प्राप्त करना चाहती हूं। आपने मेरा चित्त चुरा लिया, इसलिए मैं मरना चाहती हूं, आप मुझे बाण मार दीजिए। स्वरोचिष ने कहा, रे तू क्या बात करती है, मैं मनुष्यधारी जीव और तू हिरणी, ये क्या बात करती है? कहीं तुम किसी शाप के कारण से तो नहीं बोल रही हो? मृगी बोली, नहीं, मेरा चित्त अत्यंत शुद्ध है। हिरणी ने कहा, यदि मेरा चित्त अशुद्ध है तो आप मेरा स्पर्श कीजिए। स्पर्श करने से यदि मैं हिरणी ही बनी रहूं तब तो मेरी बात झूठी है, और उसके बाद यदि मेरा स्वरूप बदल जाए तो फिर मेरी बात सच्ची है, मानना ही पड़ेगा। स्वरूप जी ने, ही क्या बात है, ऐसा कभी संभव है? मन में सोचा, क्या अच्छी बात है। तो उसने उसका स्पर्श किया। अब उसका स्पर्श करना हुआ, दिव्य रूपिणी देवी के रूप में प्रकट हो गई। पूछा, अरे तुम कौन हो, हिरणी कैसे बन गई, और हिरणी तो तुम ये बड़ी सुंदर देवी जैसी कैसे बन गई। उसने कहा मैं वन की देवी हूं और देवताओं के प्रार्थना करने पर देवताओं ने मुझे भेजा है, मैं आपकी सेवा में आई हूं और मेरे से जो बालक होगा वो मनु कहलाएगा। फिर उसके बालक हुआ और वही जाकर आगे स्वरोचिष मनु हुआ, स्वरोचिष का पुत्र होने के कारण। तब आगे चलकर स्वरोचिष ने विचार किया कि अब अपने को जो शेष समय है घोर तपस्या में लगाना चाहिए, पापों से रहित होकर निर्मल लोकों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर वे हिमालय की कंदराओं में चले गए और वहां जाकर अच्छे अच्छे संत ऊर्ज स्तंभ प्राण दत्तोली ऋषभ निश्चर अर्थवीर इस प्रकार के जो सप्तऋषि थे उनके पास में रहे और फिर उनसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया और परमात्मा को प्राप्त हो गए। ऐसे स्वरोचिष मनु की हमने तुमको कथा सुना दी। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम सियावर रामचंद्र की मोर मुकुटवंशी वाले की आनंद कंद भगवान की अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय जय जय। कल सुबह तो विष्णु सहस्त्र नाम और दोपहर में गीता जी का पाठ।
शुरू पाठ करा दो।